फिर उसके बाद ईसाइयत के ऊपर, देखिए अहले किताब की बात हो रही है ना, तो अब ईसाइयत की। لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह वो मसीह इब्ने मरियम है। यानी अल्लाह ताला अस्तगफिरुल्लाह नऊजु बिल्लाह कि वो मसीह की फॉर्म में दुनिया में आ गया। अल्लाह ने जिस्म एक, यानी ये जिस्म इंसान वाला है लेकिन उसके अंदर अल्लाह, ये जो मसीह है इसकी शक्ल में। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे लोगों ने कुफर किया, ये कलमाए कुफर है। जबकि मसीह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था ये बता दिया गया यहाँ पे, वकाल अल मसीह, जबकि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, क्यों उन्होंने या बनी इसराइल क्यों कहा, या यो नास क्यों नहीं कहा? इसलिए कि वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए रसूल बना के भेजे गए थे, सब इंसानियत के लिए नहीं। आज तो ये उठ के चल पड़े ना सारी दुनिया को पैगाम देने, इनके नबी ने नहीं इनको कहा था कि पूरी दुनिया में मेरा पैगाम लेके घूमना, ईसाइयत की तरफ बुलाना। उन्होंने कहा था बनी इसराइल की तरफ ही भेजा गया। तो ए बनी इसराइल, उबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो अल्लाह की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। यानी उन्होंने खुद फरमाया अपनी कौम को। रब का माना क्या होता है? रब जो मालिक है, पालने वाला है। देखिए हम दुआ करते हैं ना, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कमा रब्बा यानी सगीरा का मतलब क्या? अल्लाह हम कहते हैं ए हमारे रब, हमारे वालदैन पे रहम फरमा, जैसे कि उन्होंने रब्बा यानी मेरी, मुझे पाला पोसा, मेरी तरबियत की, सगीरा जब मैं छोटी थी, ठीक है, जब मैं बेबस थी, जब मैं अपनी कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकती थी, तो वो मेरी हर जरूरत पूरी करते थे, मुझे पालते थे, हर मरहले में वो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा ख्याल किया, उन्होंने मेरे पर मेहरबानी की, वो मेरी परवरिश की, वो सारा कुछ ना रब में आता है। तो अल्लाह ताला तो रब है सारी कायनात का, कि पूरी कायनात को पालना, इसको नशो नुमा देना, इसको बढ़ोती देना, हर मरहले में उसकी जरूरतें पूरी करना, वो पालने वाला होता है। सोचो एक जर्रे से लेकर एक सूरज और बड़ी बड़ी कहकशाओं तक, यूनिवर्सिस तक, गैलेक्सीज तक, ये सारा इसको अल्लाह ताला पाल रहा है, चला रहा है, बना रहा है, बढ़ा रहा है, इसकी जरूरतें पूरी कर रहा है। ये है रब्बुल आलमीन का खासा। वो कहते हैं मैं तो खुद पाला जा रहा हूं। रब्बी का मतलब क्या? मैं तो खुद पाला जा रहा हूं। वो ये नहीं कहते कि मैं रब हूं, वो कहते हैं मेरा पालने वाला एक रब है, मैं कैसे उसका हिस्सा हो सकता हूं जबकि वो तो खुद मुझे पाल रहा है, ठीक है, और वो रब्बकुम और तुम्हें भी वो ही पालने वाला है। तो उन्होंने साफ तौर पे इन अल्फाज में कह दिया कि मैं खुद खुदा नहीं हूं, बल्कि जब वो पैदा हुए तो आप सोचेंगे जो उनकी पहली बात जो उन्होंने की, आपको पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का मौजा है कि वो यानी माँ की गोद में बोलने हैं, तो उनका पहला कलमा जो दुनिया में आने के बाद था वो था इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसका गुलाम हूं। उन्होंने नहीं कहा मैं अल्लाह हूं जब वो बेबी थे, बेबी न्यू बॉर्न बेबी थे। मेरा और तुम्हारा रब सबका अल्लाह है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने मुंह से फरमाई है, फिर कैसे ये उनको कह देते हैं कि इनकार्नेट किया है गॉड ने, उसने इसमें हलूल किया है ईसा अलैहिस्सलाम ने, और कयामत के दिन भी जब वो आएंगे तो वो यही कहेंगे। तो वो तो ये तालीम दे के गए, आज इनके जो लोग हैं वो क्या तालीम दे रहे हैं लोगों को कि वो खुदा है, क्योंकि यही इनका एक फिरका तो यही कहता है। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, ये आयतें हैं जो आपको क्रिश्चियंस को दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। अब आप कहें हाय हम उनको कहेंगे वो तो ऑफेंड ना हो जाए कि इसमें तो लिखा हुआ कि ये कुफर है, तो ऑफेंड होते रहे, कुरान कह रहा है वो कुफर है, तो अल्लाह ताला तो हक बात कहता है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, अब इसको कहने से भी अब हम डर जाए, जो भी अल्लाह के साथ शेयर करेगा नहीं ये कैसे उनको बताएं, क्योंकि आगे तो लिखा हुआ है फकत हराम अल्लाह अलैहि जन्नत, हराम है उसके लिए पर जन्नत, तो वो तो जन्नत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे सिंस ही उन्होंने ले लिए और हम जन्नत में जाएंगे सीधे चले जाएंगे, क्योंकि वो तो सिन ले चुके हैं, हम जो मर्जी करें दुनिया। जबकि वो क्या कह के गए कि मैं युशरिक बिल्ला, जो शिर्क करेगा अल्लाह के साथ किसी किस्म का भी शिर्क, अल्लाह ताला के बराबर किसी को ठहरा दे, उसकी इबादत में शिर्क करे, अल्लाह ताला के जो जो सिर्फ अल्लाह के लायक हैं सिफात उनके अंदर किसी और को शरीक कर दे, जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए किए जाते हैं उनमें किसी और को शरीक कर दे, जैसे मिसाल के तौर पे सजदा है, नमाज है, दुआ करना है, ये है वो रिचुअल्स जो इबादत के हैं, ये इबादत में शामिल है, सजदा करना भी इबादत है, नमाज इबादत है, दुआ करना इबादत है, किसी के आगे झुक जाना ऐसे ये इबादत है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, इसमें किसी को शरीक नहीं कर सकते। तो मैं युशरिक बिल्ला, जो शिर्क करेगा अल्लाह के साथ, हराम कर दी गई उसके ऊपर जन्नत, हराम है, हराम जो चीज होती है सोच लें आपके फिर क्या है? हराम। इसलिए हमारे लोग ना ये बात को समझें और सोचें, जब कहते हैं नहीं वो उनका अखलाक बहुत अच्छा है, उनकी डीलिंग बड़ी अच्छी है, उनकी ये बड़ी अच्छी, लेकिन जितनी मर्जी अच्छी हो जाए आप उनकी एडवोकेट ना बने, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि मेरे नबी ईसा ने दुनिया में बता दिया था कि शिर्क जो भी करेगा अल्लाह के साथ ये वो गुनाह है, अल्लाह ने माफ नहीं करना, नहीं करना माफ, इसको करते हुए अगर कोई मर गया, हाँ दुनिया में अगर किसी ने तौबा कर ली जो आगे बात आएगी उसका माफ हो सकता है, लेकिन अगर कोई शिर्क करता हुआ दुनिया से चला गया, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहता हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी है, जो भी शरीक करेगा अल्लाह के साथ उसके लिए जन्नत हराम है, और उसका ठिकाना दूसरा क्या है, दूसरा और कोई ठिकाना असल में है नहीं, वरना जन्नत ना मिली चलो कोई और जगह मिल जाएगी, नहीं रहते जन्नत के अंदर, वो तो बहुत लग्जरी है, कोई कोई मिडिल क्लास जैसे होता है वो मिडिल क्लास जगह पे रह लेते हैं, नहीं वहां पे सिर्फ जन्नत है या जहन्नम है, दैट्स इट, इंसान का ठिकाना इन दो में से कोई एक ही होगा, फिर दूसरा ठिकाना तो आग है, तो ये कितनी खौफनाक बात है, और ये पता चलता है कि शिर्क कितनी बुरी चीज है और अल्लाह को कितना नापसंद है। इसीलिए प्यारी बहनों अगर किसी चीज के अंदर जरा सा भी शिर्क का आपको शक भी पड़ जाए ना कि इसमें शिर्क का शाइबा कोई जरा सा भी, कि ये अशआर ऐसे हैं जिसमें शिर्क की कोई बात हो सकती है, ये नात ऐसी है जिसमें शिर्क की कोई बात हो सकती है, ये बात ऐसी है जिसमें शिर्क की कोई बात हो सकती है, हम उसको नापसंद करें, हम उसको उसको ना वो अल्फाज भी ना बोलें, बेशक हमारी नियत नहीं भी होती लेकिन ऐसी चीजों से भी बचे। देखिए ना जैसे वो कहा गया ना वला तकरबु जिना, जिना के करीब भी ना जाओ, अब वो यानी उस रास्ते पे भी ना जाओ, इसको कहते हैं ना सद्दे जराए, जो इस्लाम ने किया ना सद्दे जराए, यानी वो रास्ते में बंद कर दिए जिनसे आप कहते हैं, तो क्या हो गया अगर मैंने तस्वीर अपनी अपने कमरे में बड़ी करा के अपनी दीवार पे लगाई भी तो क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने ये स्कल्पचर ये बड़ा ही खूबसूरत है, ये मतलब स्टैचू बड़ा ही मुझे पसंद है, बड़ा ही खूबसूरत बना, हम कोई पूजा तो नहीं करते, हमने तो वैसे ही रखा हुआ। देखिए इसीलिए इस्लाम ने इसका रास्ता भी बंद किया, क्योंकि ये तस्वीरें ये जो स्टैचूज हैं इनसे शिर्क के दरवाजे खुलते हैं, ऐसी बातें करना इनसे शिर्क के दरवाजे खुलते हैं, आज आपकी नियत ना होगी कल आपको क्या पता आपके बच्चे क्या उसको सोचे, परसों आपको क्या पता कोई और इसको क्या समझ ले, तो इसलिए शिर्क की छोटी सी चीज जिससे जरा भी कहीं कहीं डाउट भी आए ना आपके जहन के अंदर कि ये शिर्क हो सकता है उससे भी बचे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। आप क्यों नहीं करते कि आप कहीं तार जा रही हो तो आप नंगी तारों को जाकर हाथ लगा दो, आप कहते क्या पता इसके अंदर करंट हो, क्या पता, अब आपको श्योर नहीं है लेकिन आप कहते क्या पता हो, तो आप उस चीज से भी बचते हैं जहां से आपको हलाकत नजर आती है, तो शिर्क तो बहुत बड़ी तबाही है, ये तो हलाकत है, इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो गारंटीड जहन्नुम है,
फिर आप कैसे कर सकते हैं कि ऐसी चीजों के करीब चले जाएं? चलो मैं देखती तो हूं कि अच्छा कौन सा हम नियत कर रहे हैं, कौन सा हम ये कह रहे हैं, पर छोड़ो नियत को, आप उन चीजों को ही छोड़ दो, ऐसे कामों को ही छोड़ दो। जब लोगों को कहते हैं कि भाई आप ना जाके वहां पे दुआएं करें, इन मजारों पे जाके ना वहां पे मांगे, वो कहते हैं हम तो अल्लाह से ही मांग रहे हैं। हाँ आप अल्लाह से मांग रहे होंगे, लेकिन जिन चीजों से शिर्क के दरवाजे खुलते हैं वो चीजें बंद कर दो, वो चीजें सही नहीं है। क्या आप देख नहीं रहे कि इससे गारंटीड जहन्नुम है? फिर क्या इससे बचना नहीं चाहोगे? वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। जालिम कौन होते हैं? जालिम वो होता है जो हकदार को उसका हक ना दे, वो भी जालिम है जो अल्लाह को उसका हक नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का हक है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाए और किसी को उसके साथ शरीक ना किया जाए। वो जालिम है, सबसे बड़ा इस दुनिया का जालिम वो इंसान है। और हम कहते हैं ये जन्नत में क्यों नहीं जाएगा, वो शिर्क करता है इतना ही काफी है, वो इतना बड़ा जालिम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये शिर्क जुल्मुन अजीम है, बड़ा जुल्म है। वो तो इतना बड़ा जालिम है, तुम कहते हो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? वो तो जहन्नुम से नहीं निकल सकता, जन्नत तो बाद की बात है, वो तो जहन्नुम से भी नहीं निकलेगा कभी भी, जो शिर्क करते हुए मर गया। और जो रसूल को उसका हक ना दे, रसूल का हक क्या है कि जब आखिरी रसूल आ गए हैं तो उनको माना जाए, जो उसको उनको उनका हक ना दे वो भी जालिम। तो जालिमों का कोई मददगार नहीं। और फिर अगला इनका अकीदा भी खोला गया, सिर्फ इनका ये अकीदा नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम, एक फिरके का तो ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है। दूसरे ने क्या किया, इनकी भी सुन ले, लकद कफर अल्लदीना कालू इन्नल्लाह थालिसु सलासा, उन्होंने भी कुफर किया जिन लोगों ने कहा अल्लाह तो तीसरा है तीन में से। तीसरा तीन में से कौन? ट्रिनिटी का जो अकीदा है, इनमें दो चीजें, एक तो एक ग्रोह इनका कहता है कि अल्लाह और ईसा अलैहि सलाम और हजरत मरियम ये तीनों खुदा हैं, तीन में एक, एक में तीन। इसको मैंने एक क्रिश्चियन से पूछा भी कि भाई आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हैं, उसने कहा नहीं ये नहीं मुझे पता कि कैसे, बस इसी तरह हमें बताएंगे। दूसरा, दूसरे ग्रोह का क्या है, अल्लाह ईसा अलैहि सलाम और तीसरा रूहुल कुदुस। बाज कहते हैं रूहुल कुदुस जिब्राइल अलैहि सलाम है, बाज कहते हैं नहीं ये रूहुल कुदुस कोई और ही चीज है। तो अब देखें इन्होंने बनाया क्या, तीन में तीसरा वो है अल्लाह। मैंने आपको बताया ना कि तीन और इनमें दोनों जो ग्रोह हैं वो एक अल्लाह को समझते हैं और बाकी किसी और को, तो वो तो तीन में तीसरा है, यानी बाकी भी है। तो एक इन्होंने ये ट्रायंगल सा बना दिया और कहा कि ये सारे खुदा हैं। अच्छा ये कैसे शुरू हुआ था? एक्चुअली एक ग्रीक मेथोडोलॉजी से, ये उनसे ग्रीक फलसफे से बड़े मुतासिर हुए। पहले आपको पता है कि ग्रीक फिलोसफी का बहुत रूज था एक जमाना, वो भी था, ये भी यानी तकरीबन चौथी सदी ईस्वी की बात है। तो इन्होंने कहा कि हम इनको यूनानियों को, ग्रीस को अपना दीन पहुंचाते हैं। अब उनमें भी कुछ इस तरह का था कि खुदा आसमान का, एक जमीन का और एक पता नहीं क्या, उनका भी कोई दो तीन उनके भी कोई चीज थी। तो इनके अंदर ट्रिनिटी नहीं पहले होती थी, इन्होंने कहा जब इनको बताना है तो हम भी कुछ इस तरह से करके बताएं कि जरा मोल्ड कर लो ना, ताकि ये ईसाइयत इख्तियार कर ले। तो उनको इन्होंने कहा इस तरह से कि एक खुदा है और एक उसका नाउजु बिल्ला बेटा और एक हजरत मरियम। और बाज ये भी कहते हैं कि सेंट पॉल जो था उसने पहले, सबसे पहले ये शुरू किया था, वो एक यहूदी से ईसाई हुआ था, तो उसने ये एक नया ही तरीका स्टार्ट कर लिया। वल्लाहु आलम किस तरह से वो ये हुआ, लेकिन यही किताबों में लिखा हुआ है। अब अल्लाह ताला तो लम यलिद वलम यूलद है, ना उसका ऊपर कुछ है कि ऊपर कोई माँ बाप या वो हूं, ना उसकी औलाद कोई है। और इन्होंने बना दिया कि तीन में तीसरा, वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, और नहीं कोई इलाह मगर इलाह एक ही है, तीन नहीं है और तीन में वो थर्ड वन नहीं है, वो तो बस एक है। और फिर इनको बहुत बड़ी एक वार्निंग दे दी गई, एक धमकी समझ ले दे दी गई, अगर बाज नहीं आते ना तुम, वह इन लम यंतहू अम्मा यकूलुना, अगर वो बाज ना आए इससे जो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो तीन में तीसरा ट्रिनिटी का कहते हैं, लयमस्सन्नल्लदीन कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, अलबत्ता जरूर छुएगी ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کون سا عذاب دردناک عذاب چھوئے گا ان کو، یعنی یہ ان کا کفر ہی ہے نا، لقد کفر کہا گیا ان کا کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں بھی فرمایا نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، سارے اہل کتاب نہیں، جنہوں نے کفر کیا یعنی جنہوں نے ٹرینیٹی کا کہا یا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، وہ بھی عیسائی تھے جنہوں نے اللہ کو ایک مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا رسول مانا، وہ بھی تھے، لیکن جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، وہ تو بدترین ہے مخلوق میں. آپ کہتے ہو کہ یہ کتنی جنت میں جانے کے قابل ہیں اور کتنے یہ اچھے ہیں، ان کو تو جنت میں جانا ہی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہم چاہے جائیں نہ جائیں یہ ضرور چلے جائیں کیونکہ یہ اتنے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اولئک ہم شر البریہ، جس نے یہ کفر کیا وہ شر البریہ ہے، ساری مخلوق میں سب سے ورسٹ، اتنی بری ہے یہ چیز. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر یہ کلمہ کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جائے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے تو وہ پہاڑ کرمبل ہو جائے، اتنا وہ ڈر کے مارے خوف کے مارے کہ اتنی بڑی بات منہ سے نکال رہے ہیں، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے، ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، بس ان کے اخلاق اچھے یہ اچھے تو اب کوئی بات نہیں، اگر وہ یہ کہتے بھی رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں یہ بہت برا کلمہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی گھلتے تھے نا کہ ان تک بات پہنچائی جائے جو اہل کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فلا تحسب نا افسوس کریں ان کے اوپر جو کفر کرتے ہیں. تو اب اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی اس چیز کی تڑپ رکھیں کہ ہم ان تک پیغام پہنچائیں، کم از کم ان آیات کو ان تک بتا دیں کہ دیکھو یہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے. پہلے تو یہ باور ان کو کرایا جائے، یہ ان کو منوایا جائے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے دلائل دیں ان کو، اس کے بعد پھر ان کو یہ قرآن کا یہ آیتیں خاص طور پہ دکھا دیں کہ دیکھو یہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کا کلام ہے اور جو کبھی نہیں بدلا ہے، تو یہ انجام ہے شرک کا، شرک معاف نہیں ہونا، اس لیے شرک سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اسی کی دعوت دی اگلی آیت میں، ایسے لوگ جو یہ پڑھ کے پھر سوچیں کہ ہائے ہمارا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا، اب ہمارا کیا بن سکتا ہے، اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو اتنے عرصے سے شرک میں ہی پڑے رہے. ایک بوڑھی عورت کوئی 90s میں تھی، اس کی میں اسلام لے آئی تو اس کی میں بات سن رہی تھی، اللہ اکبر، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا، بہت ہی ایک بات کی میں سوچی، اس نے اس دنیا میں یہ بات کی ہے، کئی لوگ آخرت میں یہ بات کہہ رہے ہوں گے، اس نے کہا مسلمان آج تک کہاں تھے، میں 90 ایئر اولڈ ہو گئی ہوں، تم لوگ کہاں تھے آج تک، یعنی میں نے اتنی زندگی شرک میں گزار دی. تو بہت سارے لوگ قیامت کے دن کہیں گے مسلمانوں تم کہاں تھے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پھر دعوت دی کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا بھلا نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف اور بخشش مانگتے، اگر وہ توبہ کر لیں واللہ غفور رحیم، تو اللہ کو کیسا پائیں گے، غفور الرحیم، جو پلٹ آئے گا اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، مگر پلٹنا شرط ہے، تم توبہ کرو. اچھا یہاں پہ توبہ بھی آیا اور استغفار بھی آیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ توبہ عمل ہے اور استغفار قول ہے. عملی طور پہ جب آپ واپس آ جاتے ہیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں تو یہ توبہ ہے، اور ساتھ ساتھ منہ سے بھی بول کے کہنا ہے استغفار. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھے، اگزامپل سے دیکھیں، کہیں پہ کسی کا پیر پھسل گیا، کسی گندگی میں پڑ گیا، وہ فوراً اپنا پیر وہاں سے نکالتا ہے اس گند سے، یہ توبہ ہے، اور پھر وہ فوری کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے گندگی میں اپنا پیر رکھا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں، یہ استغفار. سمجھ آئی؟ یعنی اس عمل کو، اپنے آپ کو فوراً ہٹا لینا، اس گناہ سے نکل آنا، یہ توبہ ہے، یہ پلٹنا ہے نا، پلٹ گیا انسان، اس سے نکل آیا. اور استغفار کیا ہے؟ بخشش مانگنا، یہ اس کو استغفار کہتے ہیں، کہ اب آپ بول کے کہیں اللہ سے. اور سوچیں اگر پاؤں گندگی میں پڑ گیا اور پھر وہیں رکھے رکھا پاؤں، وہیں دھستا جا رہا ہے، دھستا جا رہا ہے، اور اپنے منہ سے ہم کہتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے. اس لیے کہ توبہ یہ ہے کہ آپ گناہ سے پہلے باہر آئیں، نکلیں اس میں سے. اللہ اکبر. اور یہ تو اکبر الکبائر ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ. इसलिए हमें, हम सबको भी ना अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि शिर्क क्या है। शिर्क बहुत बारीक बारीक और बहुत ही उसकी चाल ना, उसके साथ इंसान बहुत आहिस्ता यानी छुपी हुई चाल के साथ इंसान के अंदर आ जाता है। जैसे इसको बताया गया हदीस में कि जैसे एक काली चींटी काली चट्टान पे है और अंधेरी रात हो, तो शिर्क इससे भी ज्यादा खुफिया तरीके से इंसान के अंदर आ जाता है। तो शिर्क से हर हर लिहाज से, हर तरफ से बचा जाए, हर किस्म के शिर्क से बचा जाए, चाहे वो रियाकारी की फॉर्म में है, चाहे वो शिर्क असगर है, चाहे शिर्क अकबर है, हर तरह के शिर्क से बचा जाए। और लोगों को भी इससे बाज किया जाए कि मत शिर्क करो। आज हमारे मुसलमानों में बहुत सारे लोग हैं जो शिर्क में पड़ गए। अभी ये मैंने खबर देखी थी कि उन्होंने कहा जी सिंध के अंदर तमाम मिजारात अब खोल दिए गए, जो बेचारे इतने अरसे से मिजार की हाजिरी से जो थे महरूम हुए हुए थे, उनके लिए बड़ा था, तो उन्होंने दिखाया कि भी चादरें ले लेके जा रहे हैं, औरतें भी चादरें लिए हैं, आदमियों ने वो फूलों के और वो कपड़े में इतना हजूम है कि वो इतने दिन से जायरा नहीं गए थे, तो अब किधर से हाजतें अपनी मांगी, वो फौरन वहां पे पहुंच गए मेजारों पे लोग। ये तो हमारे हाल, और मेजारों पे अक्सरियत अक्सरियत यही धंधा है शिर्क का, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारी आपके आगे, आपकी अल्लाह के आगे, हम तो इन्हीं से मांग रहे हैं, तो फिर इन्हीं से उम्मीदें हैं, इन्हीं के ऊपर भरोसा है, यही हमारे माई बाप हैं, यही हमारे मुश्किल कुशा हैं, यही हमारे हाजत रवा हैं, यही हमारे सब कुछ है। लोग कहते हैं ये बच्चा भी मुझे दिया है तो फलाने बाबे ने दिया है, फलाने उनके मिजार से मिला है। और शिर्क क्या होता है लोगों, शैतान ने आपको सिखाया था कि तुम तो बड़े पक्के मुसलमान हो ना, तुम्हारे लिए तो जन्नत है ही है, तुम्हें नहीं फिक्र करने की जरूरत है, सारी उनको बातें कही जा रही हैं, तो तुम चाहे जो मर्जी करते रहो, तुम्हारा सब कुछ ही जायज है, पर कलमा जो तुमने पढ़ लिया, कलमे की अकल हो तो फिर है ना, कलमे की समझ ही नहीं है, अगर कलमे की समझ हो तो ये कितना बड़ा शिर्क है, इस चीज को समझे, कलमा कितनी बड़ी बात है जो इंसान मुंह से निकालता है, उसकी समझ ही नहीं। मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल, अल्लाह ताला ने अब फरमाया, साफ फरमा दिया, मसीह कुछ और नहीं है इल्ला रसूल, मगर सिर्फ एक रसूल है बस, वो कोई खुदाई में शामिल नहीं, खुदा के बेटे और तो क्या, उनके पास कोई और ऐसा इख्तियार नहीं है कि जो खुदाई वाला हो, कोई ऐसा स्पेशल, कोई और ऐसा उनके पास प्रिविलेज नहीं है जो कि अल्लाह के पास है, कोई अल्लाह ताला की सिफात में से कोई एक भी नहीं है, वो सिर्फ रसूल है, सिर्फ रसूल, इल्ला रसूल। देखिए एक ये भी, जैसे हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह ये मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, ठीक है, जब इस तरह से फ्रेज किया जाता है ना किसी जुमले को, तो उसमें पहले नफी कर दी गई, नहीं है मसीह इब्न मरियम, कुछ भी नहीं है इल्ला सिवाय रसूल के, यानी पहले सारी चीजों की, ना बेटा कह सकते हैं, ना तीन में तीसरा कह सकते हैं, ना खुदा कह सकते हैं, ना खुदाई वाले, कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक रसूल है। जब किसी को अगर आपके ऐसा कह दिया जाए ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो माइंड कर जाते हैं कि वो तो हमारे सब कुछ हैं, वही तो हैं सब कुछ, उन्हीं से तो मिलना है, उन्हीं ने तो देना है, तो फिर उनके बारे में क्यों कह रहे हो ऐसे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कितनी दफा अपनी जिंदगी में कि मैं सिर्फ एक अब्द हूं और रसूल हूं, अब्द हूं और रसूल हूं, अब्द हूं और रसूल, और अल्लाह ताला ने भी अब्द हूं और रसूल हूं ही कहा उनको के उसके अब्द है और उसके रसूल। तो ईसा इब्ने मरियम यानी वो अल्लाह ताला ने बता दिया, वो पैगंबर थे, पैगाम लाने वाले थे, एलची थे, मैसेंजर थे अल्लाह के, मैसेज पहुंचाने वाले थे अल्लाह के, और जैसे बहुत सारे मैसेंजर्स आए, मैसेज लेकर आए ना, वो बहुत सारे रसूल आए और वो वापस भी चले गए, इसी तरह वो भी दुनिया में आए और उनको भी वापस चले जाना है। कद खलत मिन कबलिही रसूल, उनसे पहले रसूल आए हैं, जैसे वो आए इसी तरह ये रसूल है, कोई खास नहीं है कोई बात की, हाँ कोई स्पेशलिटी इनके अंदर हो जो दूसरे रसूलों के अंदर नहीं थी, जो कोई इनकी खास एक बात है कि इनको कोई खुदाई का मर्तबे मिल गए। वह उम्मे सिद्दीका, और उनकी माँ जो थी वो सच्ची औरत है, इसमें यहूदियों का रद्द है जो कहते थे कि अल्लाह ताला माफ करे कि हजरत मरियम ने कोई बुराई का काम किया है जिससे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, तो जो उन्होंने इल्जाम लगाया वो झूठे हैं, इसलिए कि उनकी माँ सच्ची है, जो उन्होंने बात कही है वो सच्ची है। और वैसे भी सूरह तहरीम में आगे आएगा कि इनकी वालदा जो थी इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह के कलिमात की तस्दीक करने वाली थी, तो वो सच्ची औरत है। और सच्चा और कौन होता है जो अपने कौल और फेल में एक जैसा हो, वो सच्चा है। तो सच्चाई की भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तारीफ है उनकी कि वो सच्ची है, और सच्चाई कितनी बड़ी एक सिफत है इंसान की कि अल्लाह ताला ने उसको मेंशन किया है। तो ये कितने इजी वर्ड्स में समझा दिया गया कि जिसकी माँ है, जिसकी भी माँ हो वो खुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि जो किसी माँ से पैदा हुआ हुआ है वो खुदा कैसे हो सकता है ना। सोचिए आप कितनी सिंपल बात समझाई गई कि माँ रखने वाला तो उसकी तो माँ का दर्जा उससे ऊपर हो गया, वो क्या खुदा होगा फिर। माँ का दर्जा जाहिर है बच्चे से ऊपर होता है, माँ बच्चे से ज्यादा हक रखती है, बच्चा नीचे होता है माँ ऊपर होती है, तो ये कैसे खुदा होगा कि नहीं माँ। और जो पैदा होता है जिसकी माँ होती है, जो जना जाता है उसको मौत भी है फिर, तो फिर जो जिसको मौत आ गई वो कैसा खुदा हुआ। और फिर और एक सिंपल देखिए, इतनी सिंपल बातों से समझाया गया कि इंसान कोई भी बिल्कुल कम पढ़ा लिखा भी है वो भी बात समझ सकता है। कहना या कुला ने तो आम इतनी बात कह के ना तीन अल्फाज में सारी कहानी खत्म कर दी कि वो तो खुदा हो ही नहीं सकते। कहना वो दोनों एक, अगर सिर्फ कहना होता तो सिर्फ हजरत मरियम की तरफ बात हो सकती थी या ईसा अलैहिस्सलाम। कहना दो हैं, ड्यूल के लिए आया, वो दोनों थे या कुलान, वो दोनों खाते थे अताम खाना। और खाना खाने से क्या ताल्लुक इस बात का कि वो खुदा नहीं थे। देखिए जो खाना खाना है ना, ये इटसेल्फ इंसान को मोहताज बना देता है अल्लाह ताला पाक के खाने पीने से, इसलिए कि खाना इंसान की जरूरत है, उसकी मजबूरी है, वो खाने के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकता। उसको 2 दिन खाना ना दो तो वो भूख से ही वो तड़पने लग जाएगा, गिर जाएगा, और 4 दिन खाना ना खाए जिंदा ही नहीं रहेगा। तो खाना एक एहतियाज है, और एहतियाज रखने वाला, मोहताजी रखने वाला खुदा कैसे हो सकता है। और फिर सिर्फ खाना में खाना खाना नहीं, जो खाना खाने वाला होता है ना वो बहुत सारी चीजों में मोहताज हो जाता है। वो इस चीज में भी मोहताज है कि कोई दाने को उगा दे जमीन से, वो इस चीज में भी मोहताज है कि कोई काट दे उसको, कोई बाजार में ले आए उसको, फिर कोई लेकर आए उसको, फिर कोई पकाए उसको, फिर वो खाएगा। और फिर देखें आप जो खाना खाता है वो इस चीज का भी मोहताज है कि खाना हजम हो जाए। अगर हजम ना हो तो परेशानी, हजम हो जाए तो भी फुजला बनेगा, वेस्ट बनेगा, तो भी एक परेशानी है कि वेस्ट बन गया तो इसको जिस्म से निकालूं। अगर वो जिस्म से ना निकले तो तब भी परेशानी है, अगर जिस्म से ज्यादा निकलने लगे तो भी परेशानी है। तो अंदाजा करें ये इंसान कैसे खुदा हो सकता है। और ये तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं तो ऐसे लोगों को देख चुकी हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे कि इस कदर, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं क्या कहूँ, अल्लाह की मखलूक है सब, मगर उनकी शक्लों पे भी यकीन जाने की एक लानत पड़ी हुई है जिनके आगे जा जाके ये लोग, और इनसे उन्होंने चोगे पहने हुए और उनके पैरों की तस्वीरें लगाई हैं, मैंने खुद देखी हैं और उनकी हर जगह तस्वीरें लगाई हैं, उनकी शक्लों पे भी लानत है। वो खुद अपनी पूजा करवाते हैं और वो कुछ एक मजहब है जो उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने अब उन्होंने कहा बुद्ध भी छोड़ो, बुद्ध तो एक तरफ मंदिर में पड़े हुए हैं, जो इन्हीं को बना लेते हैं, वो उनके आगे सज्दे भी कर रहे हैं, वो उनको पता नहीं पूजते हैं, बाकायदा पूजते हैं उन इंसानों को, और वो इनके जैसे चलने फिरने वाले इंसान है, फिर वो मर भी जाते हैं। तो इनको इतनी समझ नहीं आती कि जो मर गया है वो कैसे खुदा हो सकता है, जो हमारी तरह खाने पीने का मोहताज है ये कैसे खुदा हो सकता है, जो मेडिसिन का मोहताज है ये कैसे खुदा हो सकता है, जो बीमार पड़ जाता है ये कैसे खुदा हो सकता है, जो बूढ़ा हो रहा है ये कैसे खुदा हो सकता है। अल्लाह अकबर, कि इंसान की मत कैसे मारी जाती है, ये शिर्क इंसान को किस जगह पहुंचा देता है। कभी कोई हाथी नुमा चीजें उनको सज्दे हो रहे हैं, कभी ये इंसान अपने आप को खुद जलील कर देता है। گرا دیتا ہے. اللہ نے اس کو سب مخلوقات سے اشرف بنایا اور اس کو کہا صرف مجھے سجدہ کر اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا, کسی اور کے آگے تجھے جھکنے کی ضرورت نہیں. اور انسان کبھی ادھر جھک رہا ہے, کبھی ادھر جھک رہا ہے, کبھی اس کو سجدے کر رہا ہے, تو اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے نا. اللہ نے تو اس کو عزت دی کہ تو سب سے بڑے کو صرف سجدہ کرے گا, تجھے نہیں ضرورت ہے کہ تو غلامی کر ہارے کی, تو ان کے آگے ماتھے ٹیک, میں تجھے سب سے آزاد کرتا ہوں. اس میں تو انسان کا شرف تھا, اس کی عزت تھی کہ وہ ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا جو رب العالمین ہے, اور اس نے اپنے آپ کو کیا کر کے رکھ دیا, اسفل السافلین, نیچوں سے بھی نیچا, کہ جانور کو بھی پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, مجھے کھلانے والا اللہ ہے, مجھے پلانے والا اللہ ہے, وہ بھی اس کی تسبیح کرتا ہے, انسان تجھے نہیں عقل آتی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو تو صحیح ہم ان کو کیسے آیتیں بیان کرتے ہیں, کیسے اللہ نے کھول کھول کے تو ساری چیزیں بیان کرتے ہیں, کتنی سمپل بات ہے, یہ بات کیوں نہیں عقل میں پڑتی, تم منظور نہ یو فکون, پھر دیکھو تو صحیح یہ کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں, یہ کہاں سے ان کے بھٹک جاتے ہیں, ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی, کدھر سے پھرائے چلے جا پھرائے جاتے ہیں, یعنی بات پتہ بھی چل گئی پھر بھی ڈھیٹ کی طرح وہی کام کرتے چلے جائیں. تو یہ سب شرک کرنے والوں کے لیے, جو کسی کو بھی خدا بنائے ہوئے, چاہے وہ ہستیاں جو کہ دنیا سے چلی گئی ہیں, وہ بھی سمجھیں کہ وہ کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے, ان کی کوئی ماں تھی کہ نہیں تھی, وہ جیسے بھی کھاتے تھے یا ان کی مائیں جیسی بھی تھیں, مگر وہ انسان تھے. اور اسی طرح ان کے پاس ان کی بھی وہی حاجتیں تھیں جو باقی انسانوں کی, مثلا ہماری مشکلات ہیں, ہماری پریشانیاں ہیں, کبھی کسی طرح کی پریشانی, کبھی کسی طرح, ان کی بھی یہ پریشانیاں تھیں. جب کوئی کھانا کھانے والے ہوتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کچھ کچھ کمانا بھی پڑتا ہے تاکہ وہ کھائے, کہیں سے کچھ لانا پڑتا ہے, کچھ انتظام کرنا پڑتا ہے, تو وہ کیسا خدا ہوا جو خود ہی محتاج ہے, وہ کسی کی محتاجی کیسے دور کر سکتا ہے, وہ کسی کو کیسے کھلا سکتا ہے جو خود کھانے کا محتاج ہے. تو اس یہ نا سمپل پیرائے میں شرک کو کتنی خوبصورت طریقے سے بتایا گیا کہ کتنا بودا ہے یہ, کتنا یہ بیکار فلسفہ ہے جس کی کوئی جڑ نہیں. اور اکثریت آپ دیکھیں گے جو شرک کرتے ہیں, اگر وہ کسی سٹون کو بھی پوجا کر رہے ہیں, کسی آئیڈل کو بھی پوجا کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی کیا ہے کہ یہ کوئی ہستی تھی, یہ کوئی پرانے تھے ہمارے, فلاں تھے, وہ فوت ہو گئے, اب دور, ان کے پیچھے بھی جا کے کوئی نہ کوئی انسان ہی ہوتا ہے. تو ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے, یہ آیت سب کے لیے فٹ بیٹھتی ہے. اور جو عیسائی اتنے دنیا میں اس وقت نمبر ون پہ جو عقیدہ ہے, وہ عیسائیوں کا یہ جو مذہب ہے وہ عیسائیوں کا ہے, جو سب سے زیادہ ہے دنیا کے اندر. آج یہ اس اپنے بودے عقیدے کو لے کر, بیس لیس بات کو لے کر اور دنیا میں پھر رہے ہیں, اور لوگ مان رہے ہیں ان کی بات. وہ جو مان رہے ہیں وہ بھی نہیں عقل کرتے, ان کو بھی سمجھ نہیں ہے, اور لوگ اس لیے ان کی بات مان لیتے ہیں کہ جو حق والے ہیں نا, جو حق جن کا کام تھا کہ حق پھیلائیں, وہ سو گئے ہیں, وہ سوئے ہوئے ہیں, میٹھی نیند سوئے ہیں, ان کو دنیا کی لگژریز اور ان چیزوں نے سلا دیا ہے, دنیا کمانے نے اور دنیا میں مگن ہونے نے سلا کے رکھ دیا. اور یہ لوگ دروازوں پہ پھر رہے ہیں, یہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں, یہ اس بیس لیس عقیدے کو لے کے پھرنے لگے ہیں جس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے, جس کو ایک منٹ کے اندر ختم ہو جاتا ہے, اس کو لے لے کے پھر رہے ہیں, لوگوں کو کنوینس کر رہے ہیں. اور کوئی مسلمان ایسے ہیں جو اتنے زیادہ ان سے متاثر ہوئے, جن کا جو نام کے مسلمان تھے, ظاہر ہے اپنا دین مذہب نہیں پتا تھا, اگر پتا ہوتا تو ایسا نہ کرتے, وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ ان کی سٹوریز لے کے گھومتے ہیں کہ دیکھو ہم, دیکھو ہم کس طرح یہ بھی کنورٹ ہو کے ہمارے اس میں آ گیا کرسچینٹی. ابھی پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ ان کی مسجد کے جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں ایک ان کی طرف سے بک آئی جس کے اندر ایسے مسلمانوں کی کہانیاں جو کہ کرسچن ہوئے تھے, ان کی کہانیاں لکھی ہیں, اور انہوں نے لکھا کہ ہم کتنے کیسے کنیکٹ ہوئے ہم گاڈ کے ساتھ. تو ان کا عقیدہ تو بالکل فضول ہے, اس کو یہ اتنا پروموٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو حق ہے, ہم کدھر ہیں اور ہم کیوں نہیں بتاتے. देखिए खुद सोचिए कि ऐसे कोई मुसलमान होंगे ना जिनको दीन की नहीं समझ होगी, जिन तो को दीन अपना ही नहीं वो जानते होंगे, तभी वो फंस गए ना इनकी बातों में। अगर अपने दीन का सही इल्म होता तो ऐसा ना होता कभी। हमें जागना है अपनी नस्लों के लिए, आइंदा आने वाले लोगों के लिए और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए, वरना हम पर इल्जाम आएगा जरूर। हमने अपना काम क्यों नहीं किया? अगर हमें फुर्सत कहाँ है? कुल अताबुदूना मिन दुनिल्लाहि मा ला यम्लिकु लकुम दरअ वला नफअ, क्या तुम इबादत करते हो उनकी अल्लाह के सिवा जो नहीं मालिक तुम्हारे किसी नफा के और ना नुकसान के? अगर सिर्फ इतनी बात पूछी जाए ना, अगर सिर्फ क्रिश्चियंस को ले लिया जाए, खुद ही ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दी गई, जो अपनी सूली चढ़ने से खुद को ना महफूज रख सकते। हमारा तो अकीदा ये नहीं है, हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह ने हमको उठा लिया, लेकिन तुम तो ये कहते हो, और इसी वजह से तुमने हर जगह क्रॉस लगाया हुआ, चर्चेज में लगाया हुआ हर जगह, क्योंकि तुम्हारा अकीदा कि वो सूली चढ़े थे, जो अपना नुकसान उससे अपने आप को नहीं बचा सके। हमारे नबी ने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनको फरमा दिया कि ए नबी आप खुद कहें कुल इन्नी ला अमलिकु लकुम दर्रा वला नफा, मैं नहीं मालिक हूं तुम्हारे जरर और नफे का, मैं तुम्हारे नफे नुकसान का कोई मालिक नहीं हूं। तो हम उनको कोई नहीं मानते कि वो खुदा है, लेकिन इन्होंने उनको खुदा माना है, तो वो कौन सा खुदा है जो अपने नफे नुकसान का भी मालिक नहीं है? वो तुम्हारा क्या, तुम्हें नफा नुकसान से बचाएगा या तुम्हें नफा पहुंचाएगा जो खुद भी नहीं अपने लिए कर सकता? खुद सोचने की बात है ना। तो जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है ना, जो बचा नहीं सकता खुद को भी, या खुद को नफे नुकसान की उसमें से जाने से निकाल नहीं सकता, वो दूसरों तक कैसे ये चीजें पहुंचा सकता है? तो कुल अताबुदुना मिन दूनिल्ला, चाहे वो ईसा अलैहि सलाम मिन दूनिल्ला में अल्लाह के सिवा जिनकी भी पूजा की जाती है, या वो कोई भी भगवान राम फलां ये वो जो भी नाम लिख लें आप, जिसकी भी मिन दूनिल्ला पूजा की जाती है, वो कहाँ है? वो उन्होंने अपने आप को मौत से बचा लिया फिर, या वो मर गए हैं कहीं, या और भी जिनको समझा जाता है ये मुझे नुकसान से बचाएंगे। कोई वहां पे अक्सर ऐसे होता है कि वो जो उर्स होता है बाजार पे, उस दिन दूध नहीं शहर में आया करता था, जब हम वहां पे बैक होम होते थे तो वहां पे दूध नहीं, के दूध वाला क्या कहता था, जी आज तो मैं जी दरबार पे मैंने जाना है, वहां पे सारा दूध देना, क्यों मेरा ये जो भैंसे जो है मेरी और ज्यादा हेल्दी होंगी और मेरा काम बढ़ेगा इस वजह से। अल्लाह के बंदो, वो तुम्हें नफा नुकसान से कैसे बचा सकते हैं? वो तुम्हारा नफा कैसे कर सकते हैं? वो खुद जाके जमीन में पड़ गए, वो तो खुद इस जिंदगी के अंदर कितने मसाइब से गुजरे होंगे, मसाइल से गुजरे होंगे, तो अपने लिए नहीं कुछ कर सके। मत मारी गई ना फिर लोगों की, क्यों मत मारी जाती है? शैतान देखो कैसे दिमाग के अंदर डालता है, वो कहता है बस एक दफा ये शेयर कर ले, उसके बाद तो इसके लिए जहन्नुम ही जहन्नुम है, फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर जितनी मर्जी और अच्छे अच्छे काम करता रहे, यतीम खाने बनवाए या अस्पताल बनवाए या जो मर्जी करता रहे, बस शेर के एक दफा इससे करा दो, इसने अपना माथा टेक दिया कहीं और, या कहीं और किसी को नफा नुकसान का मालिक समझ लिया, वो तो बस काम बन गया शैतान का। असल में पुराने वक्तों के अंदर लोग जिस चीज समझते थे ना इससे मुझे नफा होगा, या जिससे डरते थे कि इससे मुझे नुकसान होगा, उसकी पूजा शुरू कर देते। इसीलिए आप देखते हिंदुओं में कितने खुदा उन्होंने बनाए हैं, किसी से नफा है, कोई लक्ष्मी देवी है तो कोई सांप को पूज रहा है तो कोई किसी चीज को पूज रहा है, क्योंकि वो जिससे डर जाते थे उसकी पूजा शुरू कर देते थे। अल्लाह ताला ने देखो इंसान को उठा के कितना बुलंद किया, ये कहा नहीं ये सब तो तुमसे नीचे हैं, तुम सबसे ऊपर हो, तुम अशरफ हो, तुम मेरे आगे बस झुको, और तुम्हें क्या हो गया? कुल अताबुदूना मिन दूनिल्ला में हर हस्ती आ जाती है जिसको लोग इबादत करते हैं, या जिसको भी लोग समझते हैं कि ये मेरा कुछ नुकसान कर सकता है, या ये इससे डर जाओ इसमें नहीं, हमें नुकसान ना दे दें, आए ये फलाने उसको राजी कर लो क्योंकि पता नहीं हमारे दुश्मन ना हो जाएं, आए फलाने को देखो नाराज ना करना, ये तो फिर बड़े बहुत बड़े लोग हैं फिर ये तो हमारे पीछे पड़ जाए, तो ये कोई मालिक नहीं किसी के नफा नुकसान के। वल्लाहु वस्समीउ अलीम, और अल्लाह है वो सुनने वाला और जानने वाला है, जो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है उसको छोड़ के तुम जाके उनको पुकारते हो जो कुछ भी नहीं सुन रहे ना उनको कुछ पता है। अब वो बुत के आगे खड़ा हुआ अपनी सारी रुदात बोल रहा है, रो रहा है, उसके आगे मिन्नते कर रहा है, उसको क्या पता? उसके पीछे जो हस्ती है अगर उसको पुकार रहा है, कहते हैं कि नहीं ये हमने सिर्फ इसके लिए रखे हुए हैं कि ये हमारे सामने सिर्फ एक इमेज के तौर पे है, असल तो पीछे हम हस्ती को पुकार रहे हैं। वो हस्ती भी नहीं जानती तुम्हारा क्या दुखड़ा है और तुम्हारी क्या जरूरत है। अल्लाह को तुम्हारी हर जरूरत पता है और वो तुम्हारी हर बात सुन रहा है। तुम मुंह से ना भी बोलो, तुम अपने दिल में भी बोलो। मैं हैरान हूँ, ये लोग बेचारे चल चल के सीढ़ियां चल चल के जा रहे थे सिंध के अंदर, वो किसी मजार के ऊपर, वो खुदा के बंदो तुम घर बैठ के अल्लाह को पुकार लेते ना तो तुम्हारी हाजत पूरी हो जाती। तुम जा रहे हो अपनी पता नहीं कितने जतन किए होंगे वहां पहुंचे होगे, किराया भी लगाया होगा, कुछ किया होगा, फिर फूल खरीदे होंगे, फिर चादरें खरीदी होंगी, फिर चढ़ चढ़ रहे हो ऊपर जाने के लिए, तो उसको क्यों नहीं पुकारते जो समी और अलीम है। अल्लाह अकबर। देखो कितनी प्यारी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे इब्ने अब्बास के साथ। इब्ने अब्बास छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे, तो अपने साथ सवारी पे सवार किया। और जैसे इंसान बच्चे के साथ बातें करता है ना, उसको सिखाता है, तो उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं इब्ने अब्बास को, सिखा रहे हैं। देखो सफर सफर में भी बातें करते करते भी उनको कितनी प्यारी बात समझा दी। काफी लंबी हदीस है मगर मैं आपको सिर्फ उसका जो एक बीच में जिस्ट है वो बताना चाहूंगी, और आप भी बच्चों से ये बात करें। फिर मैंने भी अपने बच्चे से यही बात की फिर उसके बाद कि पूरा अकीदा तौहीदी सिखा दिया उसको, कि फरमाया है बच्चे, ऐ मेरे बच्चे तू हर वक्त अल्लाह को याद रख तो तू हर मामले में अल्लाह को अपने साथ पाएगा। तू अल्लाह की हिफाजत कर यानी अल्लाह को याद रख तो वो तेरी हिफाजत करेगा यानी वो भी तुझे याद रखेगा। ऐ बच्चे अगर सारी दुनिया तेरा फायदा करना चाहे, सब इकट्ठे हो जाएं, सारे अपनी कुव्वतें मिला लें और वो तेरा फायदा करना चाहे तो नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, और सारी दुनिया मिलके तेरा कोई नुकसान करना चाहे तो नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। ये है वो रब, ये है वो ताकत जिसके पास हर ताकत है नफा और नुकसान की, वो हस्ती है। फिर तुम किधर टकरे मार रहे हो? ये देखिए बात कितनी प्यारी एक बच्चे को समझा दी, तो फिर किसी का खौफ ही नहीं रहेगा और किसी को राजी करने की इतनी परेशानी नहीं रहेगी कि हाय ये ना नाराज हो जाए वो ना। फिर तो एक अल्लाह को ही इंसान राजी करेगा और एक अल्लाह से ही खौफ भी खाएगा कि वो ना नाराज हो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बता दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप कह दें क्या तुम ऐसों की इबादत करते। तो नबी के बारे में ये अकीदा रखना कि वो हमारे किसी नफा नुकसान के मालिक है, या कोई औलिया अल्लाह के बारे में ऐसा अकीदा रखना, ये भी एक शिर्क है और ये भी नहीं करना। ठीक है, कुल या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, अहले किताब तुम अपने दीन में गुलूव ना करो। यही बात पहले भी गुजर चुकी है और मैं बहुत डिटेल में इसको समझा चुकी हूँ। तो गुलूव क्या होता है? जब इंसान हद से बढ़ जाए, मुबालगा आराई करे, जैसे ईसाइयों ने किया कि उन्होंने खुदा का बेटा ही बना के रख दिया। ठीक है, बाद में इसकी ये भी डेफिनेशन की है कि गुलूव जो है इफरात और तफरीत है, यानी हद से बढ़ जाना भी गुलूव है और जो हद है उससे कम ही कर देना। जैसे यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्ला वलदु जिना कह दिया तो वो तफरीत है। तो ना बढ़ाना है ना कम करना है मर्तबे से। ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, ना हक अपने दीन में गुलूव ना करो, हद से ना बढ़ो। तो क्या कोई हक वाला भी गुलूव होता है? नहीं, ये वैसे समझाने के लिए बताया जाता है कि ये गुलूव जो है वो ना हक ही है, तो ना हक मत करो ये गुलूव। तो जब चाहे पैगंबर ही क्यों ना, उनको उनकी हद से बढ़ा दिया जाए और ये कहा जाए ये मुश्किल कुशा, ये हाजत रवा। पैगंबरों को तो छोड़े, आजकल तो कई भी झंडियां लगा के किसी भी कब्र के ऊपर आप ग्रीन चादर चढ़ा दें और बस फिर लोग आने लगेंगे और कहेंगे यही हमारे दाता हैं, यही मुश्किल कुशा हैं। पैगंबरों की तो जात बहुत ऊंची है इंसानों में, लेकिन ये तो किसी को भी नहीं छोड़ते, हर एक को इन्होंने मुश्किल कुशा हाजत रवा बनाया, हर एक जगह पे सजदे हो रहे हैं। यानी कोई कोई इस चीज की कोई तमीज ही नहीं है कि कौन है, बस कहीं पे भी कर लो हमारी बस काम हो जाए पूरे, हमारा जो मसला है बस वो हल हो जाए, बस किसी से भी किसी के आगे भी सजदे करा लो, करने को तैयार हो जाएंगे। यानी कोई ईमानी गैरत या ईमान की कोई एक एक जज्बा होता है, एक ईमान आपको एक कुव्वत देता है, ईमान आपको हर जगह पे सजदे करने से باز کر دیتا ہے، وہ کچھ ہے ہی نہیں. بس دنیا کے یہ مسئلے ہیں 4 دن کے، ان کے حل کے لیے ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں نا کہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ کہتا ہے آپ جائے جس کی مرضی آپ میرے سے پوجا کرا لیں، کہیں جس مرضی مزار پہ لے جائیں، جس مرضی کے آگے سجدے کرا لیں، جس کی مرضی کے آگے دعائیں کرا لیں، منتے مرادیں وہاں پہ کرا لیں، دھاگے بندوا لیں، میں کرنے کو تیار ہوں. کیا ہے 4 دن کا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ کوئی بیمار ہے تو اس کی شفا کے لیے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے ہسبینڈ کا تو وہ اس کے لیے کہیں پہنچی نہیں ہے. کیا دین کو بنا کے رکھ دیا؟ ایمان کہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان تو اسٹرانگ کر دیتا ہے، ایمان تو نہیں جھکنے دیتا انسان کو کہیں پہ بھی. یہ کیسے ایمان ہے جگہ جگہ جا کے جھکنے لگے، کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں انہوں نے. اب دیکھیں ایک ایمان کی بات آپ کو بتاتی ہوں، یہ کیا فرق ہوتا ہے. کوئی غیر مسلم ہے، وہ ہندو ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام مجھے بھیجوایا کہ انہوں پتا تھا کہ میں دین کا کام کرتی ہوں، کہ ان سے کہیں خاص طور پہ کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، ہم کسی مشکل میں. تو میں یہ سوچ رہی تھی اللہ اکبر، اگر مجھے کہا جائے تو میں کبھی بھی کسی سے نہ کہوں کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو ہمارے لیے کہ ہم جس بھی مشکل میں، کیونکہ مجھے پتا ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ جو میں جس کے اوپر ہوں وہ حق ہے اور میرا خدا وہ ایک ہی ہے اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے. لیکن ان کا اسی سے پتا چلتا ہے کہ دے ہیو نو دین، نو بیس. اور وہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں، آپ اپنے خدا سے دعا کر دیں ہمارے لیے. اگر ان کو اتنا یقین ہوتا نا اپنے دین پہ تو وہ کبھی بھی ٹس سے مس نہ ہوتے. اگر ان کو یہ ہوتا کہ ان کا تو جھوٹا اور غلط عقیدہ ہے اور ہم ہی صحیح ہیں، تو کیا پھر ان کی بیس ہے؟ اس کا مطلب وہ ان کو اپنے بھی دین پہ کوئی یقین نہیں ہے. تو شرک بالکل بیس لیس چیز ہوتی ہے. تو لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ان سے کہا گیا اہل کتاب تم کیوں غلو کرتے اپنے دین میں نا حق. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، نہ تم خواہشات کی پیروی کرو اس قوم کی جو بھٹک گئے ہیں اس سے پہلے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ گریک میتھڈالوجی کے پیچھے چل پڑے، ان کے فلسفے کو انہوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا، ایرسٹوٹل وغیرہ اور یہ ان کے چیزوں کو دیکھنے لگے. تو فلسفے میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لاجک لے کر آؤ، اگر اس بات کی لاجک نہیں تو ہم نے ماننا ہی نہیں. اب وہ لاجک کرتے کرتے تو ان کے پیچھے جب یہ چلے تو بھٹک گئے یہ خود بھی، ٹرینیٹی کا عقیدہ بنا لیا کیا کیا. وہ ادلو کثیرن، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو. جنہوں نے خود لوگوں کو گمراہ کیا تھا تو ان کے پیچھے خود بھی بھٹک گئے، انہوں نے تو بہت سو کو گمراہ کیا تھا. ادلو انسوا اس سبیل، اور وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے. تو ایسی قوم کی پیروی نہ کرو جو بھٹکے میں، خود بھی بھٹکے میں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں. اور ہمارے لیے آج یہ لیسن ہے کہ نہ خواہشات کی پیروی کرو ایسوں کی جو کہ خود بھٹک گئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ دولین ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ گم کر دیا انہوں نے راستہ. گمراہ کا مطلب کیا تھا؟ راستہ گم کر دیا. ان کو تو راستہ خود نہیں پتا. اچھا کوئی بندہ لاسٹ ہو، آپ اس کے پیچھے گاڑی لگا لیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ بھی لاسٹ ہو جائیں گے. آپ اس کے پیچھے لگائیں گے نا کہ آپ کو پتا ہے اس کو راستہ. آپ اپنے آگے کس کو لگاتے ہیں؟ مثلا 4 لوگ نے کہیں جانا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کو راستہ پتا ہے، اچھا پھر آپ آگے لگے، ایسے کہتے ہیں نا. یا ہم کہتے ہیں آپ کو راستہ نہیں پتا، میں آپ کے پیچھے چل پڑتی ہوں. تو بیوقوفی کی انتہا ہوگی. یہ حال آج ہم نے اپنا کیا ہے، جن بےچارے خود راستہ گم کر بیٹھتے ہیں ان کو بجائے ہم راستہ دکھائیں ہم کہتے ہیں نہیں ہم بھی ان کے پیچھے گم ہو جاتے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں ہم نے بھی ویسا ہی کرنا ہے، ویسا ہی بننا ہے، ویسا ہی اپنا ہر چیز، اپنا کلچر، اپنا سب کچھ وہی کر لو. دین میں بھی ان کے پیچھے چلو، ان کی عیدیں مناؤ، ان کے تہوار مناؤ، ان کے جیسے بنو. تو پتہ نہیں اس میں ہماری شان ہے کوئی. وہ قرآن کہتا ہے تو سارا دن تو آپ پڑھتی رہتی ہیں کہ ولد دوالین ولد دوالین ولد دوالین، پھر اس کے بعد پھر اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں. یہ کس قسم کی منافقت ہے؟ سارا دن اللہ سے کہتے رہنا اللہ مجھے سیدھے راستہ صراط مستقیم دکھا دے، اللہ ان کے راستے میں نہ چلانا، اس کے بعد نماز سے اٹھے اور کرسمس ٹری سجا رہے ہیں، بچوں کو آگے سینٹا بن کے بیٹھ رہے ہیں، سینٹا کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا عقلوں کو بھی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد علی عیسی ابن مریم، لعنت کیے گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، چاہے یہودی ہیں چاہے عیسائی بنے، سارے بنی اسرائیل میں سے ہی تھے. جنہوں نے بھی کفر کیا ان کے اوپر لعنت کی گئی کس کی زبان پر؟ داؤد علیہ السلام کی اور عیسیٰ بن مریم کی. آپ کو پتہ ہے ان دونوں کے اوپر کتابیں اتری ہیں، ان کتابوں میں بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری. ان کے وقتوں میں جو لوگ تھے انہوں نے جو کارنامے کیے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے ان کے اوپر لعنت کرائی. عیسیٰ علیہ السلام نے تو بڑی سخت سخت باتیں ان کو کہی. داؤد علیہ السلام بھی ان کی باتوں میں آتا ہے کہ ان میں کوئی نیکوکار ایک بھی نہیں، یہ اپنے ہمسائے سے صلح کی بات کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں برائی ہوتی ہے. یہ وہ تو خود بتاتے ہیں، ان کی باتوں میں لکھا ہے ان کے اقوال میں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس طرح ان کے بارے میں بات کی ہے، ریاکار فقیر ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے، بڑی بڑی نکلتے جاتے. تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری. اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پہ لعنت ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے اپنی رحمت سے. اور جب کوئی اور لعنت کسی کے اوپر کرے، جیسے اب یہ پیغمبر کر رہے ہیں یا فرشتے کرتے ہیں یا اور لوگ کرتے ہیں، تو وہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے. تو اتنی بڑی سخت بات پیغمبروں کی زبان سے ان کے لیے آئی. اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ میں نے آپ کو ایک بات وجہ بتا دی کہ کیوں ذکر آیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کو بہت بڑا سمجھتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں سٹار آف ڈیوڈ اور ڈیوڈ اور بہت زیادہ ان کے لیے ان کے خاص ان کے جذبات ہوتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائیوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے لیے کتنی مقدس ہستی ہیں. تو ان کی زبانوں سے ان کے لیے کوئی رحمت کی باتیں نہیں ہیں، ان کے لیے لعنت بھیجی ہے انہوں نے ان کے اوپر. یہ کیوں؟ اتنی بڑی بات کہ پیغمبر جو محسن ہوتا ہے اپنی امت کا، انہوں نے لعنت کیوں بھیجی ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر؟ سب کے اوپر نہیں، جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کیوں بھیجی؟ کیا وجہ؟ وجہ آگے آ رہی ہے. تین وجوہات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں. پہلی وجہ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی. عصیان ہوتا ہے اللہ کے حکموں کو توڑنا. جو اللہ نے فرض کی ہے اس پر فرائض کو چھوڑ دینا، جو اللہ نے حرام کیا اس کے اندر جا کے پڑھنا، یہ ہے نافرمانی. ٹھیک ہے. وکانوا یعتدون، ان کا سیکنڈ جرم کیا ہے؟ کانوا یعتدون، حد سے بڑھ جانے والی. اور یہ بھی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، لوگوں کے حق مار لینا، ان کے ساتھ برا کرنا. یہ تو یعنی پہلا کہ اللہ کا بھی حق نہیں دیتے تھے، اس کا حق ہے کہ اس کو بات مانی جائے، لوگوں کے ساتھ بھی برا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی. اور تیسرا جرم جو لعنت کا بہت بڑا سبب بنا ان کا، یہ سننے والی بات ہے ہمارے لیے. یعنی کیا چیزیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کیا چیزیں لعنت کا سبب بنی اسرائیل کے اوپر، کیا ایسا کیا انہوں نے کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم، اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا، رحمت نہیں ہوئی، غضب، وہ مغضوب ہو گئے. تو وہ کیا کرتے تھے ایسا؟ کیا انہوں نے برا کیا تھا؟ وہ بےچارے کیوں لعنت کے مستحق ہوئے؟ وہ بےچارے تھے؟ نہیں، وہ بےچارے نہیں تھے، ان کا یہ تھے ان کے جرائم. اب اتنے سارے جرائم کھول کھول کے تو آپ کو بتائے گئے، مگر اب ایک ایک لفظ میں بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ ان کی کارستانی تھی. یہ ایک لفظ میں اللہ کی نافرمانی، حد سے بڑھ جانا، حدوں کو توڑ دینا، ظلم میں، حق مارنے میں کہیں رکتے نہیں تھے، دین میں غلو کرنے کے اوپر آئے تو اس میں بھی انتہائی کرتی. اور نمبر تھری، کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ. اب یہاں پہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ علماء کی نہیں بات ہو رہی. پہلے آپ نے علماء کا بھی قصور یہ سن لیا نا کہ وہ لوگوں کو روکتے نہیں تھے. کیوں نہیں روکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں نہیں؟ لوگ حرام کاریاں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ان کے ماتھوں پہ شکن نہیں آتی کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اب عام جو بھی لوگ ہیں ان کو، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تھے وہ روکتے ایک دوسرے کو برائی سے جو انہوں نے کی اس کو. یعنی آپس کے اندر کہتے نہیں تھے کبھی کسی کو کہ کسی کو منع ہی کر دے کہ یہ تم نہ حرکت کرو، یہ تم نہ برائی کرو. یعنی ایسا معاشرہ تھا جہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوتا تھا. اس معاشرے کے اوپر بھی لعنت بھیج دی گئی، کیونکہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جہاں کے رہنے والے اصلاح کا عمل جاری رکھیں. یعنی اگر کسی معاشرے میں اصلاح ہوتی جا رہی نا، اصلاح کیسے ہوگی کہ برائی سے لوگ روک رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ اصلاح ہے. تب تک اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ایسے لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں. लेकिन जब खराबी को या बुराई को बुराई समझा ही ना जाए, और बल्कि ये हद हो जाए कि बुराई को भी भलाई समझ रहे हैं लोग, अपनी बेटियों को डांस करवा रहे हैं सबके आगे और कह रहे हैं देखो कितना अच्छा डांस करती है, और सारे मर्द बैठ के देख रहे हैं बुराई को भलाई समझ रहे हैं। बुराई जो है ना वो तो कितनी जबरदस्त चीज हो गई कि वो मॉडरेशन हो, मॉडरेशन भी नहीं, क्या रोशन ख्याली हो गई, वो तो मॉडर्न होना हो गया। ये तो अच्छा काम कर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जब बुराइयां भलाइयां लगने लगे तो बुराई से रोकेगा कहाँ कोई, यानी बुराई का एहसास खत्म हो जाना। लोग ये समझने लगे हमारा जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, वहां पे कैसे इसलाह होगी। हाँ मैं तो एक एग्जाम्पल आपको दिया, आप बेशुमार एग्जाम्पल्स देख लें कि यहाँ पे बुराइयों को भलाइयां समझा जा रहा है। आप नेकी का हुक्म तो उसको देंगे ना जहां पे कोई लगे कि भाई यहाँ पे कोई बुराई हो रही है, नेकी या नेकी नहीं हो रही, या कोई बुराई है, तब देंगे ना। तो जहां पे सारे माशरे में ये है कि ये तो सब चीजें ठीक है, हराम कमाइयों जो पूरे बड़े बड़े घर बना लिए, ये कर लिए, सब उनको मुबारकबादें दे रहे हैं, मिठाइयां बढ़ रही हैं, तो बुराई कहाँ है? तो क्या हुआ, आजकल तो ये सभी चलता है, सबके ही कारोबार ऐसे हैं। अगर हर एक कोई बुराई के एहसास, देखिए दो वजूहात की वजह से ये खत्म होता है, एक तो ये कि बुराई का एहसास ही खत्म हो जाए, लोगों को यह एहसास ही ना रहे कि ये बुरा काम है। नंबर टू, जब ये लोग कहने लगते हैं ना खबरदार मुझे कोई ना रोके, किसी का हक नहीं है मुझे रोकने का, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूं, उस वक्त भी इस्लाह का अमल रुक जाता है, नहीं हो सकती इस्लाह। जो माशरा समझने लगे, जो लोग समझने लगे हम परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कहां कोई खराबी है, हम बस एक कलमा पढ़ने वाले हैं, बहुत सब अच्छे हैं भाई, तो बस फिर क्या से वहां पे इस्लाह होगी। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें लाजमी तौर पर हर सूरत में नेकी का हुक्म देना पड़ेगा और बुराई से रोकना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को नेकी को इख्तियार करने पर मजबूर करना पड़ेगा। क्योंकि जब बनी इसराइल में क्या हुआ था, उनके अंदर प्रॉब्लम ही ये हुई थी। अब देखिए उनकी प्रॉब्लम सुनने शायद आपको समझ आ जाएगी क्या, कि अबू दाऊद की हदीस में कि सबसे पहली बुराई बनी इसराइल में जो दाखिल हुई थी कि एक शख्स दूसरे को कोई ऐसे खिलाफे शरा, कोई अल्लाह की नाफरमानी का काम करते हुए देखता था तो उसको रोकता था, ऐसे नहीं कि नहीं रोकता, रोकता था उसको, उसको कहता था अल्लाह से डर, इस बुरे को हमको छोड़ दे, ये हराम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, दूसरे दिन क्या करता था, जब वो देखता था कि इसने तो छोड़ा ही नहीं, तो वो उससे अलग नहीं होता था बल्कि उसके साथ ही बैठ के खा पी रहा है, मेल जोल रख रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर इस वजह से सब में संगदिली आ गई, ये हदीस है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी आयत की तिलावत फरमा के फरमाया वल्लाही तुम पर फर्ज है कि भली बातों का हर एक को हुक्म करो और बुरी बातों से रोको, जालिम को उसके जुल्म से बाज रखो और उसको तंग करो कि वो हक पे आ जाए, यानी मजबूर करो उसको। तो यानी उनके अंदर भी प्रॉब्लम, एक दिन तो किसी को कह दिया, अगले दिन उसको सोचा मुझे क्या जरूरत है इसे बैर लेने की, मुझे क्या जरूरत है इसके साथ कुछ कट ऑफ करने की, मुझे क्या जरूरत है कि मैं अब और इसको कहती जाऊं, वो तो फिर माइंड ही कर लेगा तो छोड़ो बस अब ठीक है सब कुछ, अब उसको एक्सेप्ट कर लेना। यानी शुरू में कहते थे उसके बाद बस छोड़ देते थे, रोज रोज कौन कहता रहे। तो बुराई देखनी है तो उसके बाद, ये नहीं है कि उसके बाद उसको पी जाएं, उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद उससे कॉम्प्रोमाइज कर लें, ये नहीं करना, ये नहीं होना कि कंफर्टेबल हो जाए उससे। ठीक है, एक कंफर्ट लेवल होता है ना कि अब मुझे वो, मतलब अब मुझे बॉदर नहीं करती वो बुराई, शुरू में बॉदर करती थी, जब मैंने उसको शुरू शुरू में देखा तो मुझे बॉदर करती थी, अब मेरे लिए कोई मसला नहीं, अब मैं कंफर्टेबल हूं उसके साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। आप जब ये होने लगेगा ना तो फिर क्या होता है जानते, फिर अल्लाह ताला सबके दिल मिला देता है। हदीस में ये आ रहा है ना कि अल्लाह तुम्हारे दिल भी उनसे मिला देगा, यानी फिर आपको भी वो बुराई बुराई नहीं लगने लगेगी, फिर एक दिन आप भी खुद ही उसको उठ के कर लेंगे, क्योंकि अब आपको वो बुरी लगती नहीं है। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, जो लोग अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर करते हैं ना, वो खुद भी बुराइयों से बच के रहते हैं, बच जाते हैं, ना भी बच के रहना चाहे तो बच जाते हैं। क्यों, आपने देखा होगा कि जो लोग कोई कोई ऐसा लोगों को कहते रहते हो, अगर वो किसी दिन जरा भी इधर से उधर गलती करें तो लोग फौरन उसके पीछे पड़ जाते, हाँ हमें तो बड़े लेक्चर देती थी, खुद देखो तुम ऐसे कर रही, तो उसको तो फिर रहना ही पड़ता है उसके ऊपर। तो ये इंसान के अपने लिए भी अच्छा है, उसको वॉच करने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं और कोई कुछ भी को कुछ कहता ही नहीं, तो फिर क्या। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और हदीस में आता है तिर्मिजी की, कि या तो तुम भलाई भलाई का हुक्म और बुराई से मना करते रहोगे, या अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से कोई अजाब भेज देगा, फिर तुम उसे दुआएं भी करोगे लेकिन वो कबूल नहीं फरमाएगा। यानी दुआओं की कबूलियत खत्म हो जाती है, रोक दी जाती है जब लोग ये काम नहीं करते। लेकिन अगर सारे लोग ठंडे पेटों हर बुराई को एक्सेप्ट करने शुरू हो जाएंगे तो फिर होता क्या है, वो बुराई माशरे में आम हो जाती है। आज एक कर रहा है ना, फिर दूसरा भी करता है, फिर तीसरा भी करता है, फिर चौथा भी करता है, इस तरह सारे माशरे में वो फैल जाती है। अगर हर कोई ये कहने लगता है ना, हमें क्या, हम क्यों बुरा बने, हम क्यों कहें। हाँ जैसे मैंने आपको कहा, हिकमत से कहना जरूरी है, ये नहीं आप डंडे लेके तो लोगों के पीछे भागने शुरू कर दें, तो ये नहीं। लेकिन बुराई को देखें तो उसको मना करें जितनी भी आपकी ताकत है। आप देखिए वो हदीस आपके सामने ही है कि आप सरासर ने फरमाया, तुम में से जो शख्स खिलाफे शरा काम देखे उस पर फर्ज है कि उसको अपने हाथ से मिटाए, अगर उसकी ताकत नहीं है तो जुबान से कह दे, अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो दिल से तो उसको बुरा जाने। और ये जयीफ तरीन ईमान है, सबसे कमजोर है। अगर आप दिल में भी नहीं बुरा जानते ना, उनके साथ ही हंस गप रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं, खुश गप्पियां हो रही हैं, और यू आर लीस्ट बॉदर्ड कि ये क्या है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई ईमान नहीं है। मैं कभी सोचती हूँ अल्लाह ताला हमें माफ करे, ये व्हाट्सएप पे लोग भेजते हैं, कभी इतनी जुल्म की चीजें होती हैं कि अब तो मैं खोलती ही नहीं हूँ वीडियोस के, मुझे डर लगता है क्योंकि वो इंसान के दिमाग पे असर कर देती है। अल्लाह माफ करे, किसी बच्चे को ऐसा टॉर्चर किया जा रहा होता है, ये सोचो ये जो वीडियो बनाने वाला है, ये क्या मरा हुआ है या जिंदा है, क्या है, इसकी नहीं है जरूरत की आगे जाके उसको रोक दे, ये खड़ा बना कैसे रहा है। सोचे लोग जुल्म को देख के भी उसके पास वीडियो भी बना रहे हैं, कोई हमारे अंदर काम है समझी। ऐसी ऐसी चीजों की वीडियो बनाई होती है कि इंसान कहता है अल्लाह, पर कोई मार रहा है उसकी ऐसी वीडियो, कोई ऐसी भूखे की वीडियो, कोई जुल्म की वीडियो, तुम बुराई को देख रहे हो, तुम आगे बढ़ के उसको खत्म करो ना, अगर तुम वीडियो बनाने में मशगूल। बेहिसी हो जाती है फिर माशरे के अंदर, जब जुल्म देखते रहते हैं, बुराइयां देखते रहते हैं, गंदगियां देखते रहते हैं, तो फिर यही होता है। जैसे एक जमाने के अंदर था कि किसी ड्रामे के अंदर एक बिस्तर पे भी मियां बीवी को लेटे हुए नहीं दिखाते थे, अलग अलग बिस्तर होते थे। और आज देखें सब कुछ ही खुल गया, अब तो कोई कोई ऐसी की पता नहीं कितनी प्राइवेट बातें भी जाके दिखा देंगे कोई, इसलिए कि हमने रोका नहीं ना। हम जब वो जब बुराई आगे आगे बढ़ रही थी तो हम लीस्ट बॉदर्ड थे, हमें को परवाह ही नहीं थी। एक्सेप्ट आप करते गए करते गए करते गए, तो शैतान ना खुतुआत शैतान है ना, खुतुआत ला तभी खुतुआत शैतान, शैतान के कदमों की पैरवी ना, वो कदम कदम लेके चलता है स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में नहीं आपको सारा खिला देगा, छोटा छोटा निवाला देगा, तुम इसको चबाओ पहले, इसको हजम करो, फिर अगला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एक दिन इंसान को कोई बुरी बात ही नहीं लगती, इंसान को फिर हर चीज एक्सेप्टेबल लगने लगती है। तो ये एक चीज है जो माशरे को पाक रखने के लिए जरूरी है। इसी तरह अबू दाऊद में है कि जिस जगह अल्लाह की नाफरमानी होनी शुरू हो, वहां जो भी इन खिलाफ शरा उमूर से नाराज हुआ या उनका इनकार किया, वो उसके जैसे जहां जैसे वहां पे वो हाजिर ही नहीं। जैसे मसलन कि इस मसलन आप इस माशरे के अंदर रहते हैं लेकिन आप वहां पे उन खिलाफे शरा उमूर से नाराज हैं, आप अपनी तरफ से जुबान से भी बुरा कहते हैं, दिल में भी बुरा जानते हैं, अगर आपके हाथ से नहीं भी वो रुक सकता लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तरह उसके खिलाफ हैं, तो वो ऐसे ही है जैसे वो वहां पे नहीं है। और जो उन चीजों से राजी हो गया वो चाहे वहां मौजूद ना हो, ऐसे है जैसे उनमें ही हाजिर है। जैसे मसलन है कि होमोसेक्सुअलिटी है, बाज लोग उन मुल्कों में भी नहीं रहते जहां पे इसकी शादियां जायज हो गई, वो इस्लामी मुल्कों में रहते लेकिन वो वहां बैठे भी इंटरनेट पे कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये इनका हक है, अच्छा हुआ इनका हक इनको दे दिया, वो वहां से बैठे हुए उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ये सही चीज है, तो वो भी ऐसे ही है जैसे इसमें शामिल है। चाहे वो कहते हैं हम खुद नहीं करते, लेकिन हम एक मिसाल से आपको सिर्फ समझा रही हूँ لیکن اگر آپ ان جگہ پہ رہتے ہوئے ان چیزوں کے خلاف ہیں تو اللہ آپ کو ان میں سے کاؤنٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ چاہے دور بیٹھے ہیں ان برائیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں یہ عورتیں صحیح کر رہی ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے, تو آپ بھی ان میں شامل ہیں کیونکہ آپ نے ان کو وربلی سپورٹ کیا. ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا, خبردار کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت حق بات کہنے سے روک نہ دے, کہ لوگوں سے اتنے نہ ڈر جانا کہ حق بات ہی نہ کہو. اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابو سعید خدری رو پڑے, حالانکہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمانے لگے افسوس ہم نے ایسے موقعوں پر لوگوں کی ہیبت مان لی, ہم لوگوں سے ڈر گئے اور ہم نے نہیں کہا. اب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور آج ہمیں کوئی دیکھ لے تو ہم تو ہر ایک سے ہی ڈر رہے ہیں, کسی کو بھی نہیں کہتے کچھ, حالانکہ ہمیں پتا ہے ہمارا کوئی نہ نفع کر سکتا ہے نہ ہمارا کوئی نقصان کر سکتا ہے, ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن پھر بھی ہم ان سے ڈرتے ہیں. اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں بس ان کی ناراضگی, اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی, ان کی ناراضگی کی پرواہ ہوتی. پھر ایک حضرت علی نے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا, لوگوں تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ برائیاں کرتے تھے, ان کے عالم اور اللہ والے خاموش رہتے تھے, جب یہ عادت ان میں پکی ہوگی تو اللہ نے ان کو طرح طرح کی سزائیں دی, بس تمہیں چاہیے بھلائی کا حکم کرو, برائی سے روکو اس سے پہلے کہ تم پہ بھی وہی عذاب آ جائے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آیا. یقین رکھو بھلائی کا حکم, یہ بات میں آپ کو بتانا چاہیے, بھلائی کا حکم اور برائی سے روکنا نہ تو تمہاری روزی گھٹائے گا نہ تمہاری موت قریب کر دے گا. کہ تمہیں ڈر لگتا ہے تمہاری روزی گھٹ نہیں جانی, یہ وہ تمہاری روزی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا نہ تمہاری موت کو قریب کر سکتا, کہ وہ تمہیں مار نہیں سکتا, تمہاری موت کا وقت جو آنا ہے اسی وقت آنی. انسان کو زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مجھے مار دے گا. اللہ اکبر. اسی طرح ابن ماجہ میں یہ روایت ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنی کسی شخص کو اپنی بےزتی نہیں کرنی چاہیے, تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے ہوتی ہے, فرمایا جب تم کوئی خلاف شرع کام دیکھو یعنی کوئی گناہ دیکھو, ایسی کوئی بات دیکھو, فرمایا خلاف شرع کام کوئی امر دیکھے اور کچھ نہ کہے, قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی کہ فلاں موقع پر تو کیوں خاموش رہا, وہ کہے گا اللہ میں لوگوں کی وجہ سے خاموش رہا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں سب سے زیادہ حقدار تھا کہ تو مجھ سے خوف کھاتا نہ کہ تو لوگوں سے ڈر گیا. تو یہ ساری احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنا ضروری ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, ورنہ جیسے میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیج دے گا, اور عذاب کی قسمیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پر جو عذاب آئے ہیں مسلط ہے. تو یہ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ سینسیٹیو ہوتا ہے, وہ برائی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیں آپ لوگ ہر جمعے کو الحمدللہ سورہ کہف پڑھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو کیا چیز تھی جو کہ وہ بول پڑھتے تھے ایک دم, حضرت خضر کر رہے تھے تو اللہ کے حکم سے کر رہے تھے, مگر ان کو لگا تھا وہ یہ غلط ہو گیا, آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں, آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا, آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں, کسی کی کشتی کا آپ نے وہ تختہ توڑ دیا, کیسے آپ نے یہ کر دیا, کیوں کر دیا, تو وہ جو برائی کی چیزیں تھیں نا ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی. تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ برائی دیکھ کے بیٹھ نہیں جاتا کہ کوئی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے ماتھے پہ تیوری بھی نہ آئے, اس کو سارا سب اچھا ہے سب چلتا ہے کچھ نہیں ہے کوئی بات نہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں مجھے کیا پرواہ, وہ ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں اور بے حس ہوتے ہیں, پھر ظاہر ہے ان کی دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی. لبک سما کینو یفعلون, کتنا برا ہے جو تھے وہ کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کاموں کو کہا یہ کتنے برے کام کرتے تھے, کیا کیا کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی, لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی, اور پھر برائیاں دیکھ دیکھ کے آرام سے بیٹھے رہتے تھے. دے ڈیڈ کیئر ترا کثیر منہم یتولون, تم دیکھو گے ترا کثیر, تم دیکھو گے کثیر بہت سے منہم ان میں سے, یتولون الذین کفروا, یہ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں دوستیاں کرتے ہیں کافروں کے ساتھ. کن کے ساتھ دوستی کرتے تھے یہودی اس وقت میں, مشرکین مکہ کے ساتھ, حالانکہ ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہیے تھا, مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے تھی, جو ان کی کتاب کو بھی ماننے والے تھے, جو ان کے رسول کو ماننے والے تھے, جو اسی خدا کو مانتے ہیں جس کو وہ مانتے ہیں, ان کی بجائے وہ ان بت پرستوں کے پاس بھاگ بھاگ کے دوستیاں کرتے تھے. لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہ, کتنا برا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا, یہ عمل ہے نا, دوستی کرنا بھی ایک عمل ہے, جو انہوں نے آگے بھیجے जितने भी इनके करतूत थे वो भी सब, और इस तरह, क्योंकि जो अल्लाह वाला है वो उसके साथ विलायत का रिश्ता नहीं रखता। मैंने आपको बताया था ना, विलायत वो दोस्ती है जो गहरी दोस्ती, जिसमें इंसान दूसरे को अपना सपोर्ट समझता है, उसकी तरफ देखता है अपने मुश्किल वक्त में। तो ये कितना बुरा अमल कर रहे हैं, कितना बुरा अमल है जो ये आगे भेज रहे हैं अपने नफ्सों के लिए। आगे किसके पास? अल्लाह के पास जो भेज रहे हैं। हर इंसान अल्लाह के पास अपने अमल भेज रहा है, कोई अच्छे भेजता है, कोई बुरे भेजता है। जो ये काम कर रहे हैं बुराइयों के ऊपर, ठंडे पेटों बैठ जाना, कंफर्टेबल हो जाना, ये या अल्लाह की नाफरमानियां, लोगों पे जुल्म करना, ये सब वो अमल है, जो बुरे अमल है जो वो आगे भेज रहे हैं। अनसखित अल्लाह अलैहिम, ये कि नाराज हुआ अल्लाह उन पर, इनके अमल ऐसे हैं कि अल्लाह इनसे नाराज हो गया उन अमाल की वजह से। और फिर अदाबी हम खालिदून, और अजाब में ये हमेशा रहने वाले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में फरमाया ना, या ये बदे ना आमन तकुल्लाह वल्तन्दु नफ्स मा कद्दमत लिगद। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और चाहिए कि हर नफ्स देखे वो अपने आगे कल के लिए क्या भेज रहा है। ये देखो अपने कल के लिए क्या भेज रहे हैं, वो काम जो अल्लाह को नाराज करने वाले, जिनसे अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह की लानत भी तो तब आती है ना जब अल्लाह नाराज हो जाए। तो कल जो है वो दूर नहीं है, इंसान दुनिया से जा रहा होता है और आखिरत में अभी कदम रख रहा होता है, अभी आखिरत में गया नहीं है, और अल्लाह की नाराजगी के आसार शुरू हो जाते हैं। हद्दे निगाह तक जब फरिश्ते बैठ जाते हैं, तो ऐसा इंसान जिसने आगे बुराइयां भेजी, जो फासिक फाजिर है, वो अभी दुनिया में पड़ा हुआ है, घर वाले करीब खड़े हुए, फरिश्ता आके उसको कहता है नापाक रूह, खबीज रूह, निकल अल्लाह की नाराजगी की तरफ और उसके गुस्से की तरफ, वो तेरा इंतजार कर रहा है। अभी आगे तो क्या जाना है, अभी तो दुनिया में ही पड़ा हुआ है, अभी तो यहां से कनेक्शन कटा नहीं है, तो उस वक्त ही रुखसत होने से पहले ही ये बात पता चल गई। और जब उसको ये खबर मिलती है तो वो जाना चाहेगा? कोई वो जाना नहीं चाहता, लेकिन हम कर क्या सकता है, अब तो वक्त खत्म हो गया, अब तो अल्लाह को मनाना पॉसिबल नहीं, अब तो तौबा पॉसिबल नहीं, अब कुछ सही करना पॉसिबल नहीं, अब वो पकड़ा गया है। अब जब ये बात उसकी रूह सुनती है ना, तो वो अंदर छुपती है जिस्म के अंदर, वो निकलना नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता चल रहा है आगे तो अजाब है, आगे मैंने क्या भेजा हुआ है, वो तो अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें हैं। तो पहले स्टेप पर ही उसको खबर मिल जाती है कि अल्लाह की नाराजगी आगे तेरे लिए। सोचे ऐसे बंदे का हाल फिर क्या होता होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाल बताया ना, कि ऐसे इंसान की रूह फिर कैसे निकलती है, कि फरमाया जैसे मिसाल दी कि जैसे ऊन है, गीली ऊन, उसके अंदर गर्म सलाई डाल दी जाए, गीली ऊन के अंदर, तो वो पता है सारी जो सलाई के साथ ना वो गीली ऊन चिपक जाती है, बिल्कुल चिमट जाती है। फिर अगर कोई सलाई को खींचेगा तो क्या होगा, वो ऊन तार तार होके उधड़ के खत्म हो जाती है। तो फरिश्ते इस तरह से उसको खींच के निकालते हैं उसकी रूह को, तो उसका हाल क्या होता होगा। अल्लाह हमें ईमान की हालत में दुनिया से लेकर जाना, इस हाल में कि तू हमसे राजी हो। अल्लाह अपनी नाराजगी से जिंदगी के हर लम्हे में भी महफूज रखना, और या अल्लाह मौत के वक्त भी। और जो मोमिन है उसकी जब जान निकलेगी, तो तब भी, अभी उस दुनिया से गया नहीं, अभी बिल्कुल लास्ट में है, तो मलकुल मौत आगे कहता है घर वाले पास खड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उनको नहीं नजर आ रहा। फरिश्ता आके कहता है कि मैं पाक रूह, चल अपने रब की रजा की तरफ, उसकी मगफिरत की तरफ, वो तेरा इंतजार कर रहा है, उसकी मगफिरत तेरा इंतजार कर रही है। तो अब वो इंसान खुशी के साथ, उसका क्या हाल हो, रूह निकलना एक मुश्किल मरहला है, लेकिन सोचे उसकी खुशी का क्या हाल हो। फिर तो वो रूह कहती है मुझे जल्दी निकालो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी जैसे लेदर बैग होता है, लेदर बैग में, पहले जमाने में लेदर बैग में पानी डाला करते थे, भरा करते थे, उस मुश्क का अगर मुंह खोल दिया जाए तो जैसे पानी इधर तक इधर निकल के गिरता है, उस तरह वो रूह निकलती है जिस्म के अंदर से। ये उसको इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रजा है मेरे लिए। तो अल्लाह की नाराजगी का तो फौरन पता चल जाएगा, जिस वक्त इंसान जाने लगेगा तभी पता चल जाना है, जिसने आगे ऐसे अमल भेजे होंगे। फिर ऐसे अमल कितने बुरे हैं कि जिनसे अल्लाह की नाराजगी मिले और उसके लिए हमेशा का अजाब है, जो लोग ऐसे काम करते हैं। मतलब कानू युबीउना बिल्लाहि वन नबी, और अगर ये होते ना ईमान रखते अल्लाह पर, वन नबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अब ये उनको यहूदियों का कहा जा रहा है, लेकिन देखिए सबके लिए है ये कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती है, उनके साथ तावुन करना, उनके साथ गहरे दोस्त बन के बैठना। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर वो अल्लाह पे ईमान रखते और नबी पे, तो देखिए गैरत ना आती कि ये मेरे अल्लाह को ऐसे कहने वाले हैं, उसका इनकार करने वाले हैं, मेरे नबी का इनकार करने वाले हैं, मैं कैसे इनसे दोस्ती करूं। लेकिन अगर ये होते ना ईमान लाते अल्लाह पर और नबी पर, वमा उन्जिला इलैहि, और जो कुरान इस नबी पे नाजिल हुआ, मत तखज़ुहुम औलिया, तो ना वो बनाते उनको दोस्त कभी अहले मक्का को, उन मुशरिकीन को। वलाकिन्ना कसीरम मिनहुम फासिकून, इनका मसला ये है इनमें से बहुत सारी हैं जो फासिक है, अल्लाह की इताअत से ही निकलने वाले, उनको परवाह ही नहीं। फिर उसके बाद आखिर में बता दिया गया लतजीदन्ना। अब ये वाली जो आयत है ना, एक्चुअली ये अगले पारे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन चूंकि हमने ये पारा खत्म करना था तो आज ये आयत हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसके साथ आप कनेक्शन जब देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह भी समझ आएगी। लतजीदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन, अलबत्ता तुम जरूर पाओगे सबसे ज्यादा सख्त अदावत में, दुश्मनी में, लिल्लदीना, ईमान वालों की दुश्मनी में किन को सबसे ज्यादा पाओगे, किस कौम को, अल यहूदा वल्लदीना अशरकू, यहूद को और शिर्क करने वालों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी जैसे मैंने आपको बताया, यहूदियों ने इतनी खुफिया साजिशें आपके खिलाफ की, इसी तरह मुशरिकीन ने आपको कितनी नुकसान देने की कोशिश की, तो इनकी दुश्मनियां हद से बढ़ी हुई थी। और आज भी अगर आप ग्लोब पे, दुनिया पे देखें, तो जो मुसलमान जहां जहां पिट रहे हैं वहां पे यही दो कौमें हैं जो उनको पीट रही हैं, या तो यहूदी हैं या तो मुशरिकीन हैं। और अलबत्ता तुम जरूर पाओगे सबसे ज्यादा करीब मोहब्बत में ईमान वालों की उन लोगों को जिन्होंने कहा हम नसवारा हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में क्या था कि नबी रसूलुल्लाह की जब उन्होंने भेजा था ये हजरत जाफर तैयार और उनके साथ और मुसलमानों ने हिजरत की, तो नज्जाशी ने कितना अच्छा उनके साथ सलूक किया था। इसी तरह नज्जाशी ने जब वफद भेजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो उनके साथ क्या हुआ था वो भी हम आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो ये इनके दिल नरम होते हैं, और नरमी की वजह क्या है, आप देखें कि इनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि तुम्हें एक कोई थप्पड़ मारे ना तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना। तो ये नहीं बताया जा रहा कि ईसाई तुम्हारे बहुत हमदर्द हैं, या वो कंपैरिजन किया जा रहा है कि यहूदियों और मुशरिकीन के मुकाबले में ईसाई फिर भी तुम्हारे से दुश्मनी कम है उनको, फिर भी वो ज्यादा मोहब्बत में आगे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि उनके दिल में कुछ है ही नहीं इस्लाम के खिलाफ कोई, और कोई बिल्कुल वो इस्लाम के साथ बहुत अच्छे हैं, पक्के हैं। ये उस वक्त के उन नजाशी और इसी तरह और उनके साथी जो थे फिर मुसलमान हो गए थे, उनकी बात है, क्योंकि आगे देखिए उनकी क्वालिटीज बताई जा रही हैं। इसको आप हर एक नसारा पे फिट नहीं कर सकते, बल्कि उनकी क्वालिटीज क्या है, दालिका भी अन्ना मिन हो, ये इस वजह से कि बेशक उनमें से हैं इससे सीन उलमा है, उलमा भी इबादत गुजार, वो उलमा बा अमल उलमा, वह रोहबान है, और इनमें ऐसे भी हैं जो राहिब हैं, उनको नहीं दुनिया का कोई लालच या कोई ऐसी चीज, देखे कई ऐसे होते हैं ना कि जैसे यहूदियों के अंदर था कि हमारे ओहदे का क्या बनेगा, हम अगर इससे निकल आए, उतर आए नीचे, मुसलमान हो गए तो हमें कौन पूछेगा। इनमें राहिब किस्म के लोग होते हैं जो ईसाई हैं, जो दुनिया छोड़ के मस्त हैं अपने अल्लाह की इबादत में लगे हुए, उनको नहीं ये लालच है ओहदे वगैरह का, अल्लाह ला इस तकबीर ना, इनमें बड़ाई नहीं है, जो कि यहूदियों के अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी हुई थी अपनी बड़ाई का एहसास, जो आज तक है कि यहूदी अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। तो इनके अंदर ये दो चीजें नहीं है, एक तो इनमें रोहबान है और दुनिया का लालच नहीं है, राहिब किस्म के लोग इनमें हैं, इनमें उलमा भी हैं जो के बाअमल है, ये तकबर नहीं करते, तकबर नहीं है। तो जिनके अंदर ये तीन क्वालिटीज हो वो हैं फिर मवद्दत में मुसलमानों के करीब। आजकल तो ऐसे नजारा भी हैं उनको तो अपने दीन का नहीं पता, जैसे हमारे मुसलमानों में है जिनको बस नाम के मुसलमान है, उसके आगे कुछ नहीं, इसी तरह ईसाइयों में भी, लेकिन जो ऐसे होंगे वो फिर भी मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। मगर ये जो दो कौमें हैं यहूद और मुशरिकीन, ये तो हरगिज मुसलमानों के साथ कोई मोहब्बत के मामलात नहीं, इनकी तो दुश्मनी तारीख में उठा के देख लें आपको पूरी हिस्ट्री में इनकी दुश्मनी पता चल जाएगी। और अशरकों में सारे ही आ जाते हैं जितने भी शिरक करने वाले हैं, आप देख लें जो बुद्धिज्म है, जो हिंदुइज्म है, जो और जितने भी शिरक वाले मजाहिब है, तो सब इसके अंदर आ जाते हैं। मगर एक बात याद रखिए, प्लीज इसको इंडिविजुअल्स के ऊपर फिट करने की कोशिश ना करें। तो बाज लोग कहते हैं नहीं जी हमारे तो फलां फ्रेंड्स हैं वो ज्यूज हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरे तो नेबर में ज्यूज रहते हैं, वो तो देखिए इंडिविजुअल्स की नहीं बात हो रही, ओवरऑल कॉम की बात हो रही है। कॉम के अंदर कोई अच्छा भी पाया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मेजोरिटी लोगों में चीज होती है ना उसको बताया जाता है, एक्सेप्शनल केसेस को नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल उनके अंदर ये चीजें हैं यहूदियों में और मुशरिकीन में, और ओवरऑल जो नसारा तीन इन क्वालिटीज को रखते हैं उनके अंदर ये है कि वो मुवद्दत में है मुसलमानों के साथ। ठीक है, तो हर एक पे ना फिट करने की जरूरत है, ना हर क्रिश्चियन पे, ना हर यहूदी और उसके ऊपर, बल्कि ओवरऑल इसको देखा जाए कि इनका क्या रवैया होता है मुसलमानों के साथ। इस तरह आप देखें हरकल भी जो था वो मुसलमान तो नहीं हुआ था, रोम का जो बादशाह था, मगर उसके उसने एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था मुसलमानों के लिए। इसी तरह मकोकस जो था वो क्रिश्चियन बादशाह था, उसने भी आप तोहफे वगैरह भेजे थे जिनमें हजरत मारिया कितिया को भी उसी की तरफ से आई थी। तो ये यानी उन लोगों ने इस्लाम तो नहीं भी एक्सेप्ट किया तो तब भी उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा, इस तरह नहीं चढ़ाइयां की जैसे दूसरों ने की। तो ये एक फर्क तारीख का मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह हर जमाने में भी रहा है। अल्लाह ताला हमें इन आयात को सही समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका छठा पारा मुकम्मल हुआ, आप देखिएगा जिंदगी रही इंशाअल्लाह व ताला। अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें हिम्मत दे, सेहत के साथ सबको रखे और आफियत अता फरमाए, और हमारे से ये काम मुकम्मल कराए कि एक दिन इंशाअल्लाह ये भी होगा कि आप 30वां पारा मुकम्मल कर रहे होंगे। तो वक्त का पता भी नहीं चलता, आप देखें आपको 1.5 साल से थोड़ा ऊपर हुआ है, इसी अरसे में आप इधर उधर घूम फिर भी रहे हो सकते थे, लेकिन आपने माशाल्लाह 6 पारे मुकम्मल कर लिए, और सबसे ज्यादा तो उनको मुबारक ही है जिन्होंने हर लेक्चर सुना, हर आयत को सीरियसली लिया, हर आयत को नोट डाउन किया और हर आयत से अपने लिए अमल की बातें सीखी हैं, समझी हैं। माशाल्लाह जो डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहे हैं उनके लिए बहुत मुबारक है। तो हर आयत अपना एक मैसेज रखती है, तो इससे हमें सीखना भी है और इस इल्म को शौक के साथ लेना है, इस इल्म को शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ लेना है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल किया कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, अब अमल भी करा देना और अमल को मेरे लिए आसान भी कर देना या अल्लाह। तो इन दुआओं के साथ हमने आगे भी बढ़ना है और कोशिश भी साथ करनी है इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। मैंने अपनी तफसीर में देखा कि मैंने लिखा हुआ है कि मैंने कभी पढ़ाया होगा पहले, तो उस पे लिखा हुआ है सुभान अल्लाह 2002, मार्च 2002। तो मैं ये सोच रही थी कि देखिए यही बात है ना, माँ कद्दम अतला हूँ अनफुसहुम, कि जो आगे भेजा उन्होंने मुझे याद भी नहीं है वो, मैं पढ़ के मैं सोच रही थी कि उस वक्त मैंने क्या बोला होगा, क्या कहा होगा, मुझे नहीं पता, या मैंने पढ़ाया होगा। तो अब कितना अरसा गुजर गया और आज जब वो उस डेट पे नजर गई तो मैंने कहा देखो अल्लाह ताला के हाँ तो एक एक लफ्ज भी लिखा होगा, एक एक डेट के साथ, एक एक टाइम के साथ, हमें भूल जाता है कि हम आगे क्या भेज रहे हैं, अल्लाह के यहाँ भूल नहीं, उसके यहाँ हर चीज नोट हो रही है। सुभान अल्लाह, इस तरह ही वक्त और गुजरता जाएगा, लेकिन ये चीजें हैं हमें चाहे याद रहे ना ये कहें, लेकिन ये तोशा आखरत बनती जाती है आहिस्ता आहिस्ता इस तरह, तो अपना तोशा बढ़ाते जाए आखरत के लिए। अल्लाह ताला हम सबका बैठना और सीखना कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.